कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूँ ना कह दिया है। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूँ ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। हमारे बीच में बीडी राठी भाई जी उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली के द्वारा आपका स्वागत करते हैं और आप भी ब्रह्मा बाबा के समान कहेंगे प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहते हैं। आप सभी की तरह तो बहुत अनुभवयुक्त क्लास हम आपसे सुनेंगे। आपने 1980 में ज्ञान प्राप्त किया है और युगल सहित यानी परिवार सहित आप ज्ञान में चलते हैं। आपने साइंस बायोलॉजी में ग्रेजुएशन देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर से किया। उज्जैन में भी आपकी शिक्षा हुई है और आपने मध्य प्रदेश में विशेषकर न्याय के क्षेत्र में हम कहेंगे आप जज के रूप में आपने अपने कार्य किए हैं, आप कई स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं, विशेषकर जबलपुर में आप जुडिशियल ऑफिसर प्रशिक्षण केंद्र के एडिशनल डायरेक्टर रहे, ग्वालियर में आप प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्य करते रहे और आपको बहुत शीघ्र और त्वरित न्याय के लिए जाना जाता रहा है। अपने कार्य क्षेत्र में 36 वर्षों तक आपका ये कार्य क्षेत्र रहा और 2 वर्ष पूर्व ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि आपको दी गई है और समय प्रति समय आप अपने अनेक कार्यक्रमों में अनुभवयुक्त उद्बोधन देते रहते हैं और आपकी ज्योतिष और वास्तु क्षेत्र में भी रुचि है। तो अभी हम सुनते हैं राठी जी को।
ओम शांति। मेरे देवी परिवार के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कितनी खुशी होती है जब हम अपनों के बीच में बैठकर अपनी बातें करते हैं। थैंक्स शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, आप सब के वाइब्रेशंस और आरती दीदी, हमें चांस मिला आपके साथ ज्ञान की कुछ गुफ्तगू करें। आप लोग यहां भट्टी में आए, मेरा भी भट्टी में आने का प्रोग्राम था और इसी बीच जुरिस्ट विंग का कार्यक्रम आ गया तो उसमें कुछ व्यस्तता रही। भट्टियां बहुत करने को मिली, यहां कभी मन ही नहीं भरता था, ऐसा लगता था कि बस यहीं रहे, कभी लौटे नहीं। दादी के टाइम कितना मजा आता था, रहने के भी भिन्न भिन्न स्थानों में रुकते थे हम लोग। भट्टी के आयोजन के पीछे बड़ा भारी रहस्य है। हम सिंपली सोच लेते हैं कि चलो भाई वहां योग नहीं कर पाते हैं तो एक सामूहिक योग का कार्यक्रम हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। पर बाबा ने जो ये एक प्रोग्राम बनाया शुरू से, उसके पीछे बड़ा भारी रहस्य है। भगवान को, खुदा को पता है कि मेरे बच्चे इतने व्यस्त रहे आधे कल्प तक, राजाई करने में, राज्य अधिकार का उपभोग करने में, और फिर दूसरे हाफ आधा कल्प में दूसरे कार्यों में व्यस्त रहे तो धीरे धीरे ही मेरी तरह परिपूर्ण होंगे। बाबा जानते थे कि बच्चे कई बार संकल्प करते हैं, कारण अकारण जो भी रहे, फिर कहीं न कहीं फिसल जाते हैं। इसलिए भट्टी के आयोजन की एक प्रथा बाबा के टाइम से चली कि जो भी बच्चे संकल्प में कहीं कमजोर होते हों तो यहां भट्टी में आने के बाद उसमें एक दृढ़ता आवे, संकल्प मजबूत हो और उस मजबूत संकल्प के सहारे आत्मा परिपक्व हो। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। कितने भाई बहनों को निमंत्रण मिला भट्टी का और उसमें से हम कितने चुनिंदा लोग यहां तक पहुंचे। हमें एक मौका मिला कि हम अपने संकल्पों को दृढ़ कर पाए। सृष्टि का सारा खेल ही संकल्पों का है, सतयुग से लेकर अभी तक का। इसलिए आप सबको पुनः बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत, अभी मैं समझता हूं 2 दिन हुए भट्टी में, कई अनुभव किए होंगे। भिन्न भिन्न भाई बहनों के भिन्न भिन्न अनुभव। और हमने, मैं समझता हूं, सबने संकल्प भी किए होंगे कि जो करना चाहिए था नहीं कर पाते थे अब करेंगे, जो व्यर्थ का चिंतन करते थे अब छोड़ देंगे, फला धारणा में थोड़ी सी हमको दिक्कत होती थी अब हम धारणा मजबूत करेंगे, फला सेवा में ऐसी कमजोरी होती थी अब हम वो सेवा बड़ी दृढ़ता पूर्वक करेंगे, कहीं ना कहीं वीवीआईपी लोगों के बीच जाके सेवा करने में थोड़ा सा विल पावर, आत्मविश्वास में कहीं कोई कारण से कमी आती होगी तो उसको दूर करेंगे, ऐसे कई नाना प्रकार के संकल्प। हम भी चाहते हैं कि जिन संकल्पों को लेकर हमने यहां भट्टी की, वो संकल्प इतने मजबूत हो जाएं। वैसे तो भट्टी में बार बार आना बड़ा अच्छी बात है, एक संगठन मिलता है, साधना का एक सोर्स मिलता है एनर्जी गेन करने का, किंतु इतने मजबूत हो जाए वो संकल्प कि पुनः केवल इसलिए भट्टी नहीं करना पड़े कि अभी भी हमारे कमजोर संकल्प चलते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें और हमने क्या सोचा कि जब यहां से लौट कर जाएं तो केवल इस संकल्प से वापस ना आना पड़े कि संकल्प पुनः कमजोर हो गए। इसके लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई स्कीम बनाना चाहिए, कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए और उस प्रोग्राम को हमारी दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं सेट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। यदि हम फॉलो करें तो मैं समझता हूं कि भट्टी के आयोजन का पूरा सफलता का श्रेय हम सबको मिले। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैं कई बार सोचता था अभी तक भी कि शाम की क्लास आरती बहन के पास जाके करूं योग शाम का। अभी पिछले महीने हम वरिष्ठ भाइयों की भट्टी थी, हम आए थे सुरेश भाई और हमने संकल्प लिया कि शाम का योग अब यहां से जाने के बाद रोज ओम शांति भवन में करेंगे, घर पे नहीं करेंगे। और यहां से जाने के बाद तुरंत वो शुरू करा और बाबा ने बल दिया। तो ऐसा हमको कोई एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हम जिस एम से आए हैं उसमें सफलता मिले, हमें जो संकल्प किए हैं उसमें सुदृढ़ता आए। और देखो, हम कितने भाग्यशाली हैं, वो बाबा तो हर वाणी में बोलता है कि हम सब बहुत सभी धर्म की आत्माओं की पूर्वज आत्माएं हैं। आप देखिए, कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर हम तपस्या करते हैं और हम जो बल एकत्रित करते हैं तपस्या के माध्यम से, चाहे वो ज्ञान का बल हो, योग का बल हो, पवित्रता का बल हो, सेवा का बल हो, उसका बहुत कुछ लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है, स्वतः मिलता है। वो चाहे कोई पुरुषार्थ करे या ना करे, किंतु चूंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं इसलिए उसका फल दूसरे धर्म की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता ही मिलता है, क्योंकि उनके पूर्वज तपस्या करते हैं। और ये प्रैक्टिकल अनुभव आप अपने घरों में लौट कर देखें, कई बार कई घर की परिस्थिति ऐसी रहती है और ऐसा कि आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया आपके यहाँ, तो कहने देखो माँ बाप दादा दादी ने बहुत तपस्या करी, बड़ी सेवा पूजा करी, उसका फल है। कई बार वाहनों के पीछे लिखा रहता है माता का आशीर्वाद, वडीलाची, वो मराठी में भी लिखा रहता है वडीलची देन या जो भी ऐसा है। माना भावना ये कि उनके पूर्वजों की देन है, हम कहीं बस में जा रहे होते हैं और कोई एक्सीडेंट से बच जाते हैं या एक्सीडेंट होने के बाद भी किसी को नहीं लगता है, तो ऐसा बोलने में आता है, आप सबको अनुभव होगा कि हमारे साथ कोई पुण्यात्मा है जिसके कारण हम सब आज बच गए। बाबा तो वाणियों में बोलता ही है कि तुम सब पूर्वज महान आत्माएं हो जिनके ज्ञान का बल, योग का बल, तपस्या का बल, पवित्रता का बल, धारणा का बल, सेवाओं का बल, उसका लाभ अन्य धर्म की सभी आत्माओं को प्राप्त होता है। इसलिए हमारी और भी ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है सारे संसार की जो ड्रामा में अन्य आत्माओं के पार्ट रहते हैं उनके प्रति। एक और बात भक्ति से ही संबंधित, भाग्य का निर्माण कैसे होता है? श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होता है श्रेष्ठ कर्मों से। कई बार हम देखो देखने में भी आता है, प्रैक्टिकल है ये, एक ही किताब से कई डॉक्टर्स पढ़ते हैं और किसी की प्रैक्टिस ऐसी चलती है कि उसके आपको दो दो महीने के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं। उसी किताब से दूसरे डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, वो इंतजार करता रहता है कि शायद आज कोई दो चार पेशेंट आ जाएंगे। ऐसे ही एडवोकेट्स, किंतु उसके साथ भाग्य है क्योंकि उसने कभी श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कई गोल्ड मेडलिस्ट हमारे क्षेत्र में बात करें, एडवोकेट्स, उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती जबकि उन्होंने अपने एकेडमिक कैरियर में क्वालिफिकेशन के नाम पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और आप आश्चर्य करेंगे, जिनमें मैं भी एक हूं, कुंजियों से जो 2 रुपए में आती थी पहले, लाख की परीक्षा पास करी और मैं हाईकोर्ट जज बना। ये भाग्य है, भगवान की कृपा है, कहीं श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। हम सभी धर्मों की आत्माओं की पूर्वज आत्माएं हैं, सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस चाहिए, आप में सोच चाहिए, आप में गंभीरता का गुण चाहिए और ये जो चिंतन बाबा मुरलियों के माध्यम से देता है उस पर विश्वास चाहिए कि बाबा बिल्कुल सही बोलता है और मैं सही में इन सभी धर्मों की आत्माओं की पूर्वज आत्मा हूं और मेरे ही कारण सारी आत्माएं कितना पुण्य अर्जित करती हैं। और न केवल वो पुण्य अर्जित करती हैं, आपकी तपस्या का फल तो आपको मिलता ही है, वो कभी कम नहीं होता, किंतु जैसे मूलधन किसी को दो तो ब्याज सहित रिटर्न होता है, ऐसे ही हम आत्माएं जब तपस्या करती हैं तो हमारा मूलधन तो बाबा हमको देता ही है, किंतु अन्य आत्माओं को जो इनडायरेक्टली पुण्य मिलता है क्योंकि हम उनके दादा हैं, हम उनके परदादा हैं, हम उनके फादर हैं, हमारे कर्म का फल बच्चे को मिलता है, तो वो आत्माएं जो दुआएं देती है पूरे कल्प में, उसका एडिशनल पुण्य आपको मिलता है, हमको मिलता है, वो ब्याज कह सकते हैं हम सरल शब्दों में, तो हमको डबल फायदा होता है और उनको फायदा होता ही होता है बिना तपस्या के। तो श्रेष्ठ भाग्य बनता है श्रेष्ठ कर्म से। और श्रेष्ठ कर्म कब होते हैं? जब हमारी स्मृतियां बड़ी श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ स्मृतियां कब होती है? जब श्रेष्ठ विचारों की उत्पत्ति हमारे मन में हो। यदि हमारे विचार कमजोर होंगे, नकारात्मक होंगे, व्यर्थ का चिंतन होगा, तो स्मृतियां भी व्यर्थ की ही रहेगी, कर्म भी ऐसे ही होंगे, तब भाग्य भी। लोग कहेंगे जब भाग्य बट रहा था तो तुम कहां गए थे? एक राजा के दरबार में एक नर्तकी का डांस चल रहा था और बहुत खूबसूरत थी नर्तकी और राजा उतना ही क्रूर, तो उसको थोड़ी हंसी मजाक आई तो उस नर्तकी ने राजा से पूछा कार्यक्रम के बाद कि हे राजन, यदि आप मुझे दंड न दें प्राण दंड, तो एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तो राजा ने कहा यस, पूछो आप, कोई दंड नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि राजा, जब रूप बट रहा था तब आप कहां चले गए थे? राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं खुदा के पास भाग्य बना रहा था और तुम रूप बना रही थी, मैं भाग्य लेके यहां बैठा हूं और तुम रूप लेकर के डांस कर रही हो। तो कहने का भाव, हमारे विचारों में श्रेष्ठता नहीं होगी, स्मृतियां भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती, कर्म भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते, भाग्य की तो बात ही दूर हो जाती है। भाग्य और विचार, देखो विचार जो आज ये क्यों कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, देवता लोग भी तरसते हैं, वेद शास्त्रों और भक्ति की बात करें तो। क्योंकि मानव मस्तिष्क में, ये साइंटिफिक बात है, रिसर्च की हुई बात है, मानव मस्तिष्क में एक इतना बड़ा भारी बल होता है जो कहीं भी नहीं पाया जाता है, और वो होता है थॉट्स का क्रिएशन करना। विचारों की उत्पत्ति का बल यदि किस में है तो वो मनुष्य आत्मा के पास है। और थॉट्स भी कितने प्रकार के हैं, रिएक्टिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स, सेमी क्रिएटिव थॉट्स एंड क्रिएटिव थॉट्स। और वही एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, सेमी क्रिएटिव एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, रिएक्टिव एनर्जी, सेमी, आप बाकी तो समझ गए होंगे, पर ये सेमी क्रिएटिव क्या होता है? कई लोग जो ज्ञान में नहीं है, भगवान से नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसे कर्म करते हैं दुनिया में रहकर भी, दुनियावी कार्य से भी, कि उनके कार्य भी बड़े चमत्कारिक, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि क्या गजब, कितना सुंदर कार्य किया। वो लोग जो दुनियावी ज्ञान के आधार पर, पुस्तकों के नॉलेज के आधार पर, स्वयं की बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य करते हैं, वो सेमी क्रिएटिव थॉट्स होते हैं और सेमी क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। और क्रिएटिव एनर्जी केवल और केवल आध्यात्म, परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही होती है। और उस क्रिएटिव एनर्जी के आधार पर सारे स्वर्ग का क्रिएशन होता है, पूरे कल्प के मनुष्य, सभी मनुष्य आत्माओं का, केवल हम आत्माओं का ही नहीं, जितनी हम और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो चाहे ज्ञान में आए या न आए, उनके भाग्य का निरूपण, उनके भाग्य का लेखन भी हम आत्माओं के कारण होता है कि वो उनको क्या मिलेगा, उसका सुनिश्चित करना हमारे हाथ में है। वो भगवान तक जो नहीं पहुंच पाती, तो हमारे संकल्पों में बहुत श्रेष्ठता होना चाहिए। हमारे मन में चिंतन चलना चाहिए इतनी गंभीरता पूर्वक कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ये चिंतन चलेगा तभी गंभीरता आएगी कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। हम डायस पे बैठकर जजमेंट करें, जब तक हमारे मन में थॉट नहीं रहेगा कि आई एम द जज ऑफ दिस हाई कोर्ट, आई एम द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई एम द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, न तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, न न्याय कर सकता है। इसलिए थॉट में गंभीरता, थॉट में पावर बहुत आवश्यक है। हम क्या प्लान बनाएं? आप सब लोगों ने प्लान तो बनाया ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ जाने के बाद हमारी भट्टी बड़ी सार्थक रहे, फिर इस एम से नहीं आना पड़े कि मेरे थॉट पुनः कमजोर हो गए। हाँ, वैसे आए, संगठन मिलता है, बाबा के घर का आनंद मिलता है, रिलैक्स होते हैं, नहीं तो बहनों को तो फील्ड में सेवा के अलावा कहाँ फुर्सत, पर यहाँ आके रिलैक्स होती है थोड़ा, वो एक आए, वो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर इस थॉट से नहीं आए तो उसके लिए क्या एम बनाया? हमें एक एम बनाना पड़ेगा, हमें कहें कि जिसे बिजनेस रूल्स बनाना पड़ेंगे, एक प्रोग्राम देना पड़ेगा हमारे माइंडसेट को, और उसको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, गंभीरता पूर्वक। कुछ पॉइंट्स मैं देता हूं, यदि आपको अच्छे लगे तो अपना आप जो प्रोग्राम बनाएं अपने संकल्पों को सुदृढ़ करने में, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, हम चाहें और करना चाहिए एक प्रोग्राम बनाए कि यहां से जाने के बाद प्रतिदिन, खास करके मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, समय नहीं है तो दिन में कभी भी, जब मैं फ्री होती हूं, जब रिलैक्स रहती हूं, जब कोई काम नहीं होता है, तब बाबा के सामने बैठकर चिंतन करूं, खुद को खुद के दर्पण में देखूं कि कहां गलत हूं, मैंने आज कहीं कोई व्यर्थ तो नहीं किया, मैंने किसको अनावश्यक दुख तो नहीं दिया, ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के विपरीत हो, ऐसा कोई कर्म तो नहीं छूटा जो मुझे ब्राह्मण होने के नाते करना चाहिए था। एक प्रोग्राम ये दें आप स्वयं की उन्नति के लिए, एक चार्ट बनाएं। बाबा हमेशा बोलता है, आप किसी को दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास रखें। आप देखेंगे इस चेकिंग से बहुत फायदा होगा, आपको बार बार टारगेट होगा कि ये गलती रिपीट हो रही है, इसको कैसे सुधारें। चिंतन करें, कहीं व्यर्थ का चिंतन तो नहीं चल रहा, कहीं अपने 15-16 घंटे में मैं अपने काफी समय व्यर्थ के चिंतन में जो कहीं कोई काम का नहीं है, इतना इतना इम्पोर्टेंट कल्याणकारी संगम युग। और अब तो अभी देखिए आप, एक समय था जब 10 को इनविटेशन देते थे तो एक भी नहीं आता था, और अब एक को बुलाते हैं तो 10 लोग आते हैं। ये समय की बलिहारी है, समय नजदीक आ रहा है। अभी आपको मैं बहुत खुशखबरी दूं कि इतनी बड़ी जुरिस्ट कॉन्फ्रेंस आज तक के इतिहास में नहीं हुई, 2,500 डेलीगेट्स, और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस प्रोग्राम चला, जजेस, एडवोकेट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, कमाल का, सब लोगों ने वहां इतना अप्रिशिएट करा। तो हम सब लोग वही बात कर रहे थे, निर्वेर भाई और माहेश्वरी जी और हम सब बैठे थे आज, कि देखो समय कितना नजदीक आ रहा है। उन लोगों के डिमांड्स भी आई कि हमको मेंबर बनाइए आपके जुरिस्ट विंग के, और हमको आपसे संस्था से जोड़िए। तो उसकी भी हम चिंतन कर रहे थे कि क्या किया जाए भाई। पहले तो ये था कि जो वीकेज हैं वही सब हो सकता है, पर अब जो इतनी छात्रक आत्माएं हैं और वो चाहती हैं आपसे जुड़े, आपके सेवा कार्य में सहयोग करें, तो उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी निकाला हम लोगों ने, उसको अभी अध्ययन करा, आज मीटिंग थी। कहने का भाव कि समय बहुत नजदीक है, लेकिन किसको फील होगा? जो स्वयं के प्रति गंभीर होगा। और यदि हम ढीले पुरुषार्थी हैं, अलबेले पुरुषार्थी हैं, तो हम स्वयं स्वयं का नुकसान करेंगे। न तो हमारी बहन जी का कोई नुकसान होना है, न हमारे उस भाई बहन का जिनके कारण हम यज्ञ से जुड़े। इसलिए एक प्रोग्राम ये दें कि हम प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का चिंतन स्वयं का स्वयं से करें कि मैंने आज क्या व्यर्थ किया, ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जो मुझे ब्राह्मण होने के नाते करना चाहिए था, या वो कौन सा काम कर लिया जो ब्राह्मण होने के नाते नहीं करना था। बहुत फायदा मिलेगा। चिंतन हमारा बहुत श्रेष्ठ रखें। हमारा सब्जेक्ट था कॉन्फ्रेंस का शांति और सुख के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से सुख शांति की स्थापना, और वो एक ऐसा रास्ता जिससे जस्टिस को सस्टेन किया जा सके। हम सब ये बाबा से जुड़े, योग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, उन सब के पीछे एक सार बिंदु क्या है कि हम अतीन्द्रिय सुख का आनंद उठाएं। आज हमने उठाया, आप लोग पता नहीं यहां प्रोग्राम था कि नहीं, बहन जी को पता होगा आप सब लोगों का। श्री कृष्ण जब आया सुबह, जन्माष्टमी मनाई और क्या डांस किया उन्होंने, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहन रुक्मिणी बहन के तन में आए कि साक्षात उसके हाव भाव, चेहरे की बनावट, बालों, ऐसा देखने से लगता था। और क्या निर्वेर भाई को पता लगा, वो दौड़ के आए, मुन्नी भाई को, मुन्नी बहन को पता लगा, वो दौड़ के आई, कोई प्रोग्राम नहीं था अचानक। फिर क्या फल और माखन और मिश्री और केले, बहुत अतीन्द्रिय सुख, क्या डांस हुए। और इसी अतीन्द्रिय सुख की लालसा में हम बाबा से जुड़े, ज्ञान लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि बहनों जैसे भाग्यवान तो इस कल्प में क्या कभी भी कोई भी नहीं हो सकता है। बहनों आज देखिए, बहनें कितनी एजुकेटेड और भाइयों से ज्यादा आगे फील्ड में कार्य करने वाली, सब कुछ। ऐसा नहीं कि कोई गरीब घर से या कोई थकावट के कारण या कोई मजबूरी के कारण यहां जुड़ गई, सब कितनी ब्रिलियंट बहनें। पूरे यज्ञ को देखो आप, भाइयों से ज्यादा भाषण करने वाली, भाइयों से ज्यादा सेवा करने वाली, वीवीआईपी की सेवा में भाई पीछे हट जाएगा, बहन डायरेक्ट, उनको कोई नहीं रुक सकता। राखी बांधने जाएंगे तो वो कलेक्टर साहब बहन को पहले बिठाएंगे, भाई खड़ा रहेगा, कुर्सी उसको भी मिलेगी। ये लोग इतना जीवन समर्पित करती हैं, तो हम इसी अतीन्द्रिय सुख के लिए, सुख का एक इंग्रेडिएंट होता है। देखिए जो मेडिसिन होती है ना, जितने भी क्रोसिन है, एस्प्रो है, एनासिन है, अभी तो सब बंद हो गई, जो आजकल की कोई भी मेडिसिन लीजिए, उसकी शीशी पे या उसके रेपर पे लिखा रहता है कि इस दवाई में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं और किन के आधार पर यह दवाई का निर्माण हुआ है। वो क्यों लिखे रहते हैं कि आप देख लीजिए, अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं कोई चीज जो इसमें मिली है वो आपको एलर्जी तो नहीं करती, वो कहीं रिएक्शन तो नहीं करती। और वो सब चीजें नहीं मिला है तो वो मेडिसिन नहीं बन सकती, एक निश्चित मात्रा में वो चीजें मिलाना पड़ती है। ऐसे ही सुख का एक कंपोनेंट है, सुख का एक इंग्रेडिएंट है, और वो है शांति। जब तक मनुष्य आत्माओं के पास शांति नहीं हो सकती, तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। और शांति क्या चीज है? थॉट्स में स्थिरता, थॉट्स में पॉजिटिविटी, थॉट्स में श्रेष्ठ संकल्प। हमारे थॉट्स जितने वीक होंगे, जितने कमजोर होंगे, जितने नेगेटिव होंगे, उतने हलचल के रहेंगे, उतनी ही अशांति का आपको अनुभव होगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, एक तालाब है, दरिया है, आप घूमते टहलते गए और ऐसे ही बड़े सहज भाव से एक पत्थर उठाया, ऐसे ही घूमते फिरते जैसे करते थे अपन, और उठा के ऐसे ही डाल दिया बिना किसी एम ऑब्जेक्ट के। अब देखो वो जल, वो स्थिर जो था, उसमें हलचल लहरें उठने लगी, अशांत हो गया, ऐसे ही हम आत्माएं जाने अनजाने में या जानबूझकर या व्यर्थ चिंतन होने के कारण किसी भी आत्मा को, भाई साहब वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, अब तुझे क्या करना बोल रहा था, तो उसके दिमाग में एक शुरू हो गया चीज, अच्छा मैंने जिंदगी भर उसको ये इतनी मदद करी, इतना ऐसा करा और ये दोस्ती निभाई और उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उसको पता नहीं करा कि नहीं करा, पर उसने चूंकि बोला तो चिंतन शुरू, उसके थॉट्स में नेगेटिविटी शुरू, और आप में जो स्थिरता थी, जो आप श्रेष्ठ संकल्प करते थे, वहां हलचल होने से अशांत स्थिति हो गई। कई बार तो हम संस्कार बिगाड़ लेते हैं या अस्थिरता और कमजोर संकल्पों के कारण। शिवानी बहन का एक उदाहरण याद आता है, उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, बोले आपके यहां कोई मेहमान आया और कई बहनें बहुत बहुत इतने एटिकेट्स और मैनर्स वाली होती हैं कि आपके यहां कोई गेस्ट आए तो उसको पता है कि ये गेस्ट केवल एक या दो फलका खाएगा या थोड़ा कुछ खाएगा पर 50 आइटम बनाएगी, 10 मीठे 10 नमकीन, शौक है उसको, हॉबी है उसका, संस्कार है। आप कैसे अशांति होती है, थॉट्स कैसे डिस्टर्ब होते, देखिए आप, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था शिवानी बहन ने। अब वो भाई आए, उन्होंने भोजन करा, जो भी बहनें आई वो भोजन करा, चले गए। अब कोई कारण से वो बहन उनके यहां गई और उन्होंने कोई कारण से जो भी रहा हो, या उसकी हॉबी नहीं हो या शौक नहीं हो, एक आध सब्जी बना दी कुछ, अच्छा ये आई थी तो मैंने इतनी चीजें बनाई और इसको देखो एक फल का और दो सब्जी बना के रख दी, जरा नहीं समझता इसको अंदर चिंतन, अब आने दो इसको। अब वो कोई कारण से वो दंपति फिर पहुंचे, इसने भी वही करा। अब इतनी सी नेगेटिविटी के कारण आपने अपना नेचुरल संस्कार खो दिया कि जो दूसरों को खूब दिल भर से बड़े रिस्पेक्टफुली खिलाते थे, क्यों खो दिया, क्योंकि उसके नेगेटिव थॉट्स देखे आपने, उसकी कमजोरी को देखा। तो कई बार हम पत्थर फेंककर और कई बार दूसरों को देखकर अपने थॉट्स को कमजोर कर लेते हैं, नेगेटिव बना लेते हैं, तो जब अशांत हो जाते हैं तो सुख की तो कल्पना भी नहीं कर सकते आप। और यदि आप शांत हैं तो सुख का पहला इंग्रेडिएंट है, सुख का आप देखोगे, सुख वाली दवाई का फॉर्मूला तो वहां लिखा होगा, शांति 100%, तो आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसलिए थॉट्स बहुत पावरफुल चाहिए, और अब तो समय की डिमांड है। अभी देखो, जब एक समय था हम यहां बाबा से मिलने आते थे तो ऐसे घंटों रात रात भर, दूसरे दिन भी हो गया, नेक्स्ट डे भी हो जाता था, और ऐसे एक एक से बोल के बाबा बात करता था, बच्चे कैसे हो, ऐसे क्या मजा आता था। फिर उसके बाद समय का परिवर्तन हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, और अब देखो बाबा कितनी देर आते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में ये ऐड करें, चिंतन करें कि मैं कहां फॉल्ट पर हूं, कहां से ये लीकेज है, जैसे कहीं पानी की टंकी में से लीकेज है और रोज खाली हो जाती है, तो अपन कितना प्रयत्न करते हैं कि रोज इतना पानी और मोटर चलाना पड़ती है और ये पानी चला कहां जाता है, नल टप टप करे तो आपको अच्छा लगता ही नहीं, तुरंत प्लम्बर को बुलाओगे इसमें, भाई देखो क्या चक्कर है। ऐसे ही यदि हमारे थॉट्स में कहीं लीकेज है तो चेक करो, कहां लीकेज है, क्या गड़बड़ है और क्यों है, किस कारण से, उसको रिपेयर करो। एक प्रोग्राम तो हम अपने आप को ये दें। दूसरा प्रोग्राम, समान का दें। हमारा मस्तिष्क नेचुरल है, 2500 वर्ष तक हम ऐसी दुनिया में रहे तो एक उसका एक्सेप्टेंस बहुत धीरे होता है, स्वीकार बहुत मुश्किल से होता है। बाबा कितने सम्मान देता है रोज मुरली में और कितने वर्षों से। हम योग में भी बैठते हैं, सम्मान रिजेक्ट करने के दो प्रकार होते हैं। हमारा माइंड दो प्रकार से सम्मान को रिजेक्ट कर देता है। एक तो ये कि मैं गंभीरता पूर्वक सम्मान को समझता ही नहीं हूं, तोते की तरह योग में बैठा सम्मान दो चार दस जो उसको बुला और दूसरा दूसरे थॉट चलाए, योग का टाइम पूरा हो गया, उठो भी चाय पियो, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसा वैसा ये थॉट चलाए, आपके माइंड ने डिस्कार्ड कर दिए, एक्सेप्ट ही नहीं किए, वो आपने चिंतन ही नहीं किया कि ये मेरे ब्रेन ने इन थॉट्स को ग्रहण किया या नहीं किया। और दूसरा होता है नकार करने का तरीका, दो प्रकार से हमारा ब्रेन रिजेक्ट करता है। दूसरा तरीका ये रॉयल तरीका है, पर हमको क्या लगता है, वाह आज तो बड़ा अच्छा योग लगा, मैं महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में बड़ी सहन शक्ति है, और थोड़ी 8 बजे मुरली के पहले ही झगड़ा और थॉट के चलाया, मेरे में बड़ा पावर ऑफ टॉलरेंस है। आपके माइंड ने रिजेक्ट कर दिया उसको, रिजेक्ट करने का यह रॉयल तरीका है। और दूसरा तरीका रिजेक्ट करने का, बहन जी ने क्लास कराई, तुम बहुत महान आत्माएं हो, आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट चला, कहां बहन जी महान आत्मा है, नींद ही नहीं खुलती, आज तक अमृत वेले ही नहीं हुआ। वो अंदर सोचता है बहन जी सेवा देती है तो सेवा ही नहीं कर पाता हूं, कोई आर्थिक मदद ही नहीं होती मुझसे, अब मैं तो खूब सोचता हूं धारणा करूं, पर अब क्या गुलाब जामुन की बड़ी कमजोरी है, मना ही नहीं कर पाता हूं मैं। ये डायरेक्ट रिजेक्शन होता है थॉट्स का, सम्मान का। ये दो तरीके हैं। रॉयल तरीके में हमको ये गलत फहमी रहती है कि हमने सम्मान धारण कर लिया, और जो रिजेक्शन होता है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को दर्शित करता है, आपको अनुभूति भी होती है कि मैं व्यर्थ संकल्प कर रहा हूं या नेगेटिव हूं। तो फिर क्या उपाय किया जाए, हम अपने प्रोग्राम में ये पॉइंट भी रखें, सम्मान का चिंतन, पहले वो चिंतन 10-15 मिनट कि कहां गलत हूं, कहां फॉल्ट है। सम्मान का बहुत अच्छा बाबा ने तरी, एक मुरली थी बहुत सालों पहले, मेरे ख्याल से 26 फरवरी ऐसा कुछ डेट थी, और 80, 82, 84, 85 की बात होगी। उस वाणी में बाबा ने वो जैसे ही बोला, ऐसे बैठे थे यहां ओम शांति भवन में, और एकदम दिल को छू गई, कमाल है, ये तो ऑलमाइटी के सिवाय थे, इतनी बुद्धि तो किसी की चली ही नहीं सकती। कैसे समान हमारा ब्रेन स्वीकार कर ले, उसका क्या तरीका है। मैं आत्मा हूं, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ। मैं उस वाणी में था, मैं हूं ही आत्मा, दोनों के देखिए दोनों सेंटेंस में, मैं आत्मा हूं और मैं हूं ही आत्मा, उस पर जोर देकर आपकी बुद्धि जब चिंतन करती है तो आपका ब्रेन स्वीकार करने लगता है। ऐसे ही हम अपने में एक प्रोग्राम दें सम्मान का, और जैसे उदाहरण आप 10-15-16 ऐसा एक चार्ट बनाए रोज अपनी डायरी में, या एक एक सम्मान लिखें और 2-2, 3-3 दिन तक उसका विशेष चिंतन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मैं एक महान आत्मा हूं, अब इस पे चिंतन करिए थोड़ी देर, ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, सचमुच मैं महान आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरा भाग्य तो देखो, पहले उठते ही मैं भगवान को गुड मॉर्निंग करता हूं, कमाल है मेरा भाग्य, भगवान मुझे नमस्ते करता है, भगवान मुझे पढ़ाता है। आप चिंतन करो उस पर, और भी कई पॉइंट्स निकलेगी अपने आप। जब इसका चिंतन आप बार बार करोगे तो आप देखोगे, स्वयं महसूस करोगे, आप महसूस करें, और वो महसूस तो आपको चेहरे से झलकेगी, वो सामान आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा। ये बड़ा साइंटिफिक ज्ञान है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो भगवान का ज्ञान है, ये बड़ा वैज्ञानिक तरीके का ज्ञान है। ऐसा भक्ति मार्ग जैसा यदि हम लेंगे तो कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते। बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान। मुझे परमात्मा स्वर्ग का मालिक बनाता है और इतनी करोड़ों आत्माओं से मेरा सिलेक्शन किया, वाह मेरा भाग्य, वाह सचमुच में महान आत्मा। ये चिंतन आपको देना पड़ेगा, तब आपका ब्रेन, आप देखेंगे कि बार बार जब ये चिंतन दोगे तो एक्सेप्ट करने लगेगा ब्रेन, और वो चिंतन आपके अंदर समाएगा, और फिर आप में एक नेचुरल हो जाएगा। जब आपका ये नेचुरल थिंकिंग हो जाएगा कि मैं महान आत्मा हूं, आप देखिए आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके कर्म, आपका चाल, आपका चरित्र, आपका चलन, सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज होगा, ऑटोमेटिक। एक समान दें उदाहरण के लिए, मैं मास्टर सरस्वतीवान हूं, और इस पर चिंतन करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी, कमाल है बाबा, प्योरिटी की धारणा दुनिया सोच भी नहीं सकती, वो इतना इजी, और इतनी खुशी मिलती है मुझे, कितने पवित्र आत्मा हूं, और इस पवित्रता के कारण कितनी शक्तियां हैं मुझे। भगवान ने कहा मुझे, एक मुरली में है, आप ध्यान तो नहीं, रेत पर आप कभी पढ़ेंगे व्यक्तवाणियां तो मिलेगी आपको। भगवान ने कहा कि बाबा ने कि बच्चे मुझे सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं पता है, दुनिया वाले भक्ति मार्ग में भी और तुम लोग भी, तुम बच्चे भी, कि बाबा तुम सर्वशक्तिमान हो क्योंकि मैं पवित्रता का सागर हूं। सर्वशक्तियों का इंग्रीडियंट प्योरिटी है। यदि प्योरिटी है 100% तो सारी शक्तियां आपके पास है। आपके पास शांति है तो सारा सुख आपके पास है। ऐसे ही यदि प्योरिटी है तो प्योरिटी से उत्पन्न होती सारी शक्तियां आपके पास है। आप महसूस कर रहे हो, देखो हम कितनी वाणियां सुनते हैं, बाबा कहता बच्चे ये शक्तियों को यूज करो, लेकिन कहां और कितने लोग कर पाते हैं। हम खुद जाके कि क्या मैं कर पाता हूं, क्या मैं कर पाती हूं। पावर ऑफ टॉलरेंस की बात करें और हम देखो छोटी छोटी बातों पे आपस में सामना करने की शक्ति की बात आई, हम कर पाते हैं। समाने की बात आई, देखो कोई को बोलना मत हो ऐसा हो गया, और वो फिर दूसरे को बोलेगा कोई को बोलना मत, और वो तीसरे को बोलेगा कोई को बताना मत, और क्यों, मेरे पास तो बहुत समाने की शक्ति है। प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं प्योरिटी में देखो प्योरिटी का अर्थ ये नहीं कि यही प्योरिटी है, वो तो एक मोटा रूप है। प्योरिटी बहुत बारीक चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो बाबा जो सर्वशक्तिमान कहलाता है, क्योंकि बाबा ने कहा मुझे इसलिए सर्वशक्तिमान कहते हैं क्योंकि मैं पवित्रता का सागर हूं, इसलिए मेरे में शक्तियां हैं। हम कहीं ना कहीं लीकेज है। स्थूल पवित्रता तो बहुत मामूली बात है, आप ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी हो, मैंने पवित्र हो, लेकिन पवित्रता को डेफिनेशन एक बार एक क्लास में मैंने सुना, दादी की क्लास थी, पवित्रता की डेफिनेशन यानी कोई भाई या कोई बहन जा रही है लौकिक में या अलौकिक में कहीं भी कोई भी, और यदि आपके मन में कोई थॉट आ गया नेगेटिव तो आपकी पवित्रता तो खंडित हुई हुई, उस भाई या बहन की भी खंडित हो गई। तो कोई प्रश्न करा कि दादी ऐसे कैसे हो गई, उस भाई या बहन की क्या गलती, बोले नहीं, उसके अंदर उसके चेहरे से, उसकी चलन से, उसके हाव से, उसके भाव से, उसको देखने से वो थॉट वाइब्रेशन से वहां क्रिएट हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं फॉल्ट उसका भी है। पवित्रता बहुत सूक्ष्म है और बाबा पवित्रता का सागर है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। और हम जब ये समान चलाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो उसको हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर ले, इसलिए उसका चिंतन करो कि कमाल है बाबा, मना इतनी शक्तियां की माया भी मुझसे डरती है, इतना सरलता से विकारों को मैं भूलता जा रहा हूं। ऐसे कई चिंतन आपके मन में स्वतः थॉट उत्पन्न होंगे। ये तो एग्जाम्पल, ये दूसरा प्रोग्राम दें आप ताकि भट्टी सफल हो। तीसरा एक और सामान दें, एक और चीज, तीसरा हेडिंग वरदान। हम जब योग में बैठते हैं तो जो सूक्ष्म वतन है वो बाबा ने, पता है आपको, सेवा के लिए हेडक्वार्टर बना रखा है आजकल। वहां से बैठे बैठे वो खुद भी और एडवांस पार्टी के माध्यम से सेवा करता है। हेडक्वार्टर उसका वहां है, ये सब ब्रांच ऑफिस हैं जितने दिखते हैं। वरदान का चिंतन करें जब योग में बैठे, चिंतन करें उसको, देखें सर्वशक्तिमान के सामने बैठा हूं, सारी शक्तियों की किरणें, सारा प्रकाश मुझे मिल रहा है, भरपूर हो उस हजार हाथ वाले मेरे मीठे प्यारे ऑल माइटी सर्वशक्तिमान परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ, उसका वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पे रखा हुआ है। आप चिंतन करें योग में, थोड़े दिन के चिंतन से आपको लगेगा कि मैं कितनी फुलफिल होती जा रही हूं मैं आत्मा, और कैसी कमजोरियां निकल निकल के भाग रही है। ऐसा एक प्रोग्राम दें। बाबा कहता बच्चे तुम विघ्न विनाशक भाव, ऐसे कितने वरदान देता है बाबा हमको, सफलता मूर्त भाव, विजयी मूर्त भाव। अब भक्ति मार्ग में तो क्या विघ्न विनाशक ने गणेश बाबा ने, और हमारा ज्ञान कितना सुंदर, हम सब समझते हैं कि हम सब विघ्न विनाशक हैं। देखिए हमारे दैनिक क्रियाकलाप में भी, क्रियाकलापों में भी यदि कोई विघ्न उत्पन्न होता है, कोई भी विघ्न, सपोज बिजली का बिल भरने गए और एक कोई विघ्न आ गया और बिजली का बिल भर नहीं पाए और कनेक्शन कट जाएगा आज, तो फिर कितनी दौड़ भाग करके वो विघ्न को दूर करते हो, आप विघ्न का विनाश कर देते हो। तो विघ्न विनाशक हुए, ऐसे कोई भी विघ्न ले, हम सब विघ्न विनाशक हैं। यदि छोटे पैमाने पे करते हैं तो स्वयं के, और बड़े पैमाने पे करते हैं तो बड़े गणपति। हम सब विघ्न विनाशक भी हैं। तो बाबा जितने वरदान देता है मुरलियों के माध्यम से, बच्ची तुम सफलता मूर्त भाव, विघ्न विनाशक भाव, और भी कई कई, उनका चिंतन करें, ऐसा महसूस करें योग में कि बाबा का वरद हस्त मुझ पर रखा हुआ है। बच्चे तू निश्चिंत रह, मैं बैठा हूं ना। हम वो स्लोगन तो पढ़ लेते हैं कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूं, एक ऐसा वो डिस्प्ले होता ना, वो पढ़ते हैं हम, लोगों को भी देते हैं, पर कभी उसको आत्मसात करते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, और बाबा बोलता है बिल्कुल डोंट वरी बच्चा, मैं हूं ना, तू तेरी समझ में आए वैसी सेवा कर, सबसे निपट लूंगा मैं तेरे लिए। ऐसा चिंतन, इतना अपनत्व, इतना लगाव, एक प्रोग्राम दें हम अपने आप को चिंतन का, समान को एक्सेप्ट करने का, वरदानों को स्वीकार करने का। और इस बात को कभी नहीं भूलें कि ऐसा अमूल्य जीवन देवता लोग भी तरसते हैं। हम ही देवता बनने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन तरसेंगे तब हमारे ब्राह्मण जीवन को देखकर। कि इससे तो कई बार ऐसी बात आती है कि विनाश होना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलता हूं बाबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विनाश होगा हम लक्ष्मी नारायण भले ही बन जाएंगे, पर आप तो चले जाओगे, ये कहां अतीन्द्रिय सुख और कहां ये ब्राह्मणों के साथ ये सुख मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। इसमें जो आनंद है वो स्वर्ग में कतई नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जीवन के आगे तो मैं कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, ब्राह्मण जीवन के आगे तो स्वर्ग एक छलावा है। ब्राह्मण जीवन जहां भगवान के अंग संग 24 घंटे आप रहते हो, वो आपके अंग संग रहता है, और वो कहता है बच्चे में बैठा हूं ना, ये सब कहां सुनने को मिलेगा आपको? कौन कहेगा, कौन नमस्ते करेगा? तरस जाएंगे हम, याद ही नहीं रहेगी। तो ये तो संगम युग, बाबा हमको हमारे साथ रहे, हमको स्वर्ग की, मैं नहीं समझता कि स्वर्ग में इससे ज्यादा आनंद आता होगा बहन जी, कभी नहीं आता होगा, बिल्कुल नहीं आता होगा, इससे बड़ा आनंद तो आ ही नहीं सकता है। जहां भगवान हो, खुदा हो, और उसकी रहमत हमारे ऊपर लगातार बरसे, कहां आएगा, कैसे आएगा, आप कल्पना करो। वो तो एक छलावा है, और क्यों देता है छलावा मालूम है बाबा? बाबा इसलिए बोलता है कि बच्चे अब मैं कब तक तुमको पढ़ाऊं, तो आपसे छुटकारा पाने के लिए कि अब स्वर्ग आने वाला है, मैं तो जा रहा हूं, नहीं तो तुम जाने ही नहीं दो उसको कभी। बच्चे बाबा से भी ज्यादा ताकतवर, भगवान बाबा की आज्ञा, बच्चों की आज्ञा के बिना जाता भी नहीं है। तो हम एक प्रोग्राम ये दें वरदानों को स्वीकार करने का, कई वरदान है, मुरली पढ़िए आप, अलग बताने की आवश्यकता नहीं, और कई ऐसे थॉट्स चलाएं खुद ब खुद, बहुत सीनियर हैं सब लोग, मैं तो भाग्य मानता हूं कि आपके साथ विचार शेयर करने का मौका मिला, बहनों ने मुझे मौका दिया, तो वो चिंतन करें। अलबेलापन बहुत खराब चीज, बहुत खराब चीज, बहुत दुखदायी। हम अपना इतना अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं अलबेलेपन में, और व्यर्थ के चिंतन में और दुनियादारी में लगा देते हैं, जो कि सब समाप्त होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है, और ये स्थायी है। अशरीरी आया था, एक वो शेर है, अशरीरी आया था, जिंदगी तमाम कर दी, जिंदगी तमाम कर दी एक कफन के लिए, ऐसे ही आया था, और पूरी जिंदगी के बाद मुझे क्या मिला, कफन ही मिला कि और कुछ गया? जिंदगी तमाम, उसके पूरे शब्द तो नहीं मालूम, पर उसका भाव यही है। तो हम अपने प्रोग्राम में एक ये पॉइंट भी रख सकते हैं कि वरदानों को हम कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे चिंतन करें। एक और बात, एक और पॉइंट, बाबा हमसे क्या चाहता है? हमने अपने स्वार्थ में स्वचिंतन के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, पर हम बाबा के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पैसे का बाबा भूखा नहीं है, बहुत है देने वाले उसके पास, और ना वो किसी का रखता है, खुदा है, भगवान है, वो क्या किसी का पैसा मांगेगा, और कौन देने वाला उसको, क्या अहंकार। क्या चाहता है बाबा, कभी चिंतन करा? करना चाहिए, समय की पुकार है। बाबा चाहता है बच्चे मुझे प्रत्यक्ष करो। हमारी मीटिंग्स चल रही थी, आज इतने सुंदर पॉइंट निकले जुरिस्ट विंग के, जबकि कई बार मीटिंग होती है और वही लोग रहते हैं, कभी ये पॉइंट थॉट्स आते ही नहीं, आज आए। कई भिन्न भिन्न प्रोग्राम बने सेवा के और एक थॉट आया और मैंने बोला कि देखो हम सब इतने सालों से ज्यूरिस्ट्रिंग के माध्यम से सेवा करते हैं किंतु बाबा का एम ऑब्जेक्ट पता है आपकी ज्यूरिस्ट्रिंग क्यों बनी। बोले बताओ भाई साहब आप। मैंने कहा इसलिए ज्यूरिस्ट्रिंग बनी कि आप अदालत से जजमेंट प्राप्त करें कि गीता का भगवान शिव है। सेवा दूसरे तरीके से करें कोई हर्जा नहीं, करना चाहिए, पर हमारा एम ऑब्जेक्ट जो था उसको तो हम अभी कहीं उसको हाथ ही नहीं लगाया, हमने उठाया ही नहीं। फिर उसके लिए चिंतन चलने लगा सबका कि इसके लिए क्या क्या करें, कैसे भूमिका बनाएं, और बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट निकले। कहने का भाव इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण, इतना वरदानी, इतना भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन जिसके लिए देवता तरसते हैं और बाबा केवल एक ही बात कहता है कि बच्चे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो खाता भी नहीं हूं, और ये तुम जितना बनाते हो सब मालूम है मुझे, तुम अपने लिए करते हो, नाम मेरा लेते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम सब बच्चों को ये बता दो कि मैं उनका बाप हूं ताकि मेरे बच्चे जो तरस रहे हैं वो मुझसे मिलने से बिछुड़े नहीं। इतना छोटा सा कार्य और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। हम अलबेलापन कहें या जो भी कहें वो सेवा नहीं करते, और जो सेवा हम कर रहे हैं उससे हम स्वयं भी संतुष्ट नहीं है। खुद झांकिए, चिंतन कीजिए कि बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो सेवा कर रहे हैं हम, शिवानी बहन ने कितनी सेवा की, मीडिया से कितनी सेवा हुई, लेकिन फिर भी अधूरी है। मैं कभी सोचता हूं, कभी चिंतन चलता है कि बाबा जो चाहता है वो तो हुआ ही नहीं कुछ भी। हम कभी कोई भाई बहन या आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा, कोई के पास जाते होंगे, सेमिनार रखते हैं, प्रोग्राम, लेक्चर्स, तो भाई लोग कहते हैं आपका ज्ञान तो बहुत सुन लिया हमने, हमने शिवानी बहन को भी बहुत सुना, आपके फोल्डर्स भी पढ़े, लिटरेचर भी बहुत पढ़ लिया, और ये तुम जो बातें करते हो ना बड़ी बड़ी कि हमको भगवान मिल गया है और धरती पर भगवान आ गया है, जरा दिखाओ तो कहां है तुम्हारा भगवान, ऐसा पूछते होंगे। और नहीं तो यदि कोई पूछ ले तो क्या जवाब है आपके कि हमको तुम्हारा साहित्य नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया, शिवानी बहन के माध्यम से सब पता लग गया हमको कि तुम क्या है, तुम्हारा नॉलेज क्या, फिलोसफी है, और बहुत हमने कई प्रोग्राम अटेंड करे, और तुम्हें जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, खुदा मिल गया और भगवान मिल गया और भगवान आया हुआ है, जरा दिखाओ तो कहां है भगवान। बाबा मुरलियों में ये बात कहता है, उसको बड़ा दर्द कि मैं बच्चों के लिए इतना करता हूं और कैसे बच्चे हैं ये, सुनते ही नहीं है, इतना सा काम नहीं कर सकते मेरा। बाबा कहता है बच्चे जब इन सब बातों, क्योंकि मैं तो विचित्र हूं, देखो चित्रवान हो तो मैं खड़ा कर दूं कि देखिए ये जो ये है ना ये भगवान है, लोग देखें दर्शन करें, ये भगवान है इनके दर्शन करें, पर मेरा खुदा मेरा बाबा वो तो विचित्र है, उसका तो कोई चित्र भी नहीं। अब उस चित्र को, और ऐसा विचित्र कि उसको देख भी ना हम भी नहीं देख सकते, तो उसको कैसे उसको बताऊं उस भाई को कि बताओ जरा तुम्हारा खुदा कहां है, भगवान कहां है, बाबा कहां है, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ईश्वर आ गया, भगवान आ गया, मिलाओ जरा। ये एक चौथा पॉइंट दें आप उस प्रोग्राम में कि हमको बाबा की प्रत्यक्षता कैसे करना है। बाबा मुरलियों में वो तरीका भी बताता है, हम जितनी बातें कर रहे हैं सब बाबा के सिलेबस और कोर्स की बातें। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चलन से ही मेरी प्रत्यक्षता होगी। हम अब जरा दर्पण उठा के देखें कि हमारा चरित्र, हमारा चलन, हमारी चाल ढाल, हमारे एटिकेट्स, हमारे मैनर्स ऐसे हैं जो हमको देख के लोग स्वीकार कर ले कि कि इसको वास्तव में खुदा मिला है, क्योंकि उस विचित्र की प्रत्यक्षता तो हम अपने चित्र के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारा चित्र इतना सुंदर होना चाहिए, भले पांच तत्व का बना है, मैं तो पांच तत्वों को भी रोज थैंक्स करता हूं, रोज कि थैंक्स है आप पांच तत्वों को। बहन जी कितनी देर बोलना, लेट हो गए, सॉरी। तो हम अपने चेहरे पर इतनी खुशबू लाएं चिंतन की, चिंतन से ही चेहरा खिलेगा। यदि व्यर्थ चिंतन है आपका चेहरा मुरझाया होगा, श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ चिंतन है, आपके चेहरे से आपकी बाप की प्रत्यक्षता होगी, हमारे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। एक और बात, और मैं अपना कार्यक्रम आगे आपको दूंगा। आजकल फॉरेन में एक सिस्टम चला है कि थैंक्स करना चाहिए सबको। आप लोगों ने मैगजीन्स पढ़ी होगी, टीवी में समाचार सुने होंगे बहुत, कि हम एक दूसरे को थैंक्स दें, कोई बात जरा भी कर तो उसको थैंक्स दो। ऐसे ही भगवान को रोज शुक्रिया अदा करो, रोज तेरा बहुत लाख लाख शुक्रिया है बाबा, जो ऐसे ऐसे भवसागर इतना इतना गंदा संसार और हमको कैसे कमल फूल समान कितना निश्चिंत बना दिया तेने, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, तू ही कमा के देता है हमको। और लोग कैसी भटक रहे हैं, कैसे तरस रहे हैं, उसका रोज शुक्रिया अदा करो, थैंक्स बाबा, लाख लाख शुक्रिया है तेरा। ये करना कभी मत भूलो। और ये जनरल एटिकेट्स मैनर्स भी होना चाहिए कि हम दूसरों की बातें विनम्रता पूर्वक सुने, बोलें कम, उनको रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, दूसरे के वर्क का एप्रिसिएशन जरूर करें, क्योंकि भगवान के ज्ञान, गीता के ज्ञान का एक मूल उद्देश्य है कि हमारी लाइफ अलौकिक, लौकिक या परिवार वाली सब में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे आध्यात्मिक हो गए और सारी हमने अपनी गृहस्थी को बिगाड़ लिया। बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस के लिए हमको दुनिया में रहना है, गृहस्थी में रहना है, ये भी हमारा परिवार है, देवी परिवार जो समर्पित भाई बहन है वो भी परिवार ही है। हम में एटिकेट्स हो, मैनर्स हो, हम दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे को प्यार दें, प्यार दोगे तो सहयोग मिलेगा, ये सहयोग का इंग्रीडियंट है। सहयोग चाहिए तो प्यार दीजिए, सुख चाहिए तो शांति दीजिए, शक्तियां चाहिए तो पवित्रता दीजिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें चाहता हूं कि आप एक प्रोग्राम दें, प्रोग्राम बनाएं और अपनी भक्ति को सार्थक करें और बहुत सफल करें। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जिस लक्ष्य से आए वो लक्ष्य यहां से जाने के पहले ही पूरा हो जाए आपका, और बहुत खुश खुश लौटे। समाज में जाने के बाद जब आपको लोग देखें तो उनको अनुभव होने लगे कि खुदा आया है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।
पल पाओगे संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
राठी जी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत सुंदर अनुभव युक्त विचारों से सबको प्रेरित किया आपने, और खास टाइम निकाल करके आप नीचे से ऊपर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।